वर्ष 2020 हर हाल में एक यादगार वर्ष रहा है। पहले तबाह करने वाली बुशफायर्स और फिर एक सदी में आई एक भारी महामारी जिसने जीवन और आजीविका को नष्ट करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कहर बरपाया। आइए नज़र डालते हैं कि ये वर्ष ऑस्ट्रेलिया की राजनीति के लिए कैसे एक रोलर कोस्टर बना रहा। साल की शुरुआत से ही जैसा पूरा देश आग की चपेट में था, हजारों अग्निशामक गर्मियों में बुशफायर्स के साथ युद्ध स्तर पर जूझते रहे। 24 मिलियन हेक्टेयर और 3,000 से भी अधिक घर नष्ट हो गए और कोई 3 बिलियन यानी 3 अरब जानवर मारे गए। और फिर वुहान नामक एक चीनी शहर में एक वायरस की रिपोर्ट शुरू हुई।
Brisbane man is in isolation tonight after suffering symptoms similar to a potentially deadly new virus that's rapidly spreading from China.
हफ्तों के अंदर ही ये दुनिया भर के देशों में फैल गया। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता गया, मौतें बढ़ती गईं और दुनिया इसके सामने असहाय होकर जैसे घुटने टेकती दिखाई देने लगी। ग्रेट डिप्रेशन के बाद से इस महामारी ने सबसे खराब वैश्विक आर्थिक संकट पैदा किया। दुनिया भर के नेता इससे जूझने के लिए कुछ कर पाने के लिए मजबूर होने लगे। ऑस्ट्रेलिया भी अलग नहीं था। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने तत्काल यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की।
A travel ban will be placed on all non-residents, non-Australian citizens coming to Australia.
व्यवसाय चरमरा गए और लाखों लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। इन ऑस्ट्रेलियन लोगों ने SBS न्यूज़ को अपने दिल का दर्द बताया जब वो सेंट्रल लिंक कार्यालयों के सामने कतारों में लगे हुए थे।
The Aussie battler right now. I think we're all Aussie battlers.
I had a good job, and I was enjoying it, and my boss told me a few days ago that I was laid off, so unfortunately this is what I got to do now.
पैनिक की स्थिति कुछ यूं बनी कि लोगों ने सुपरमार्केट से सामान का स्टॉक करना शुरू कर दिया और मामला यहां तक आ पहुंचा कि सब जगहों से टॉयलेट पेपर गायब हो गया। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस बेरीजिक्लियन ने शांत रहने का आह्वान किया।
We have a big factory in Penrith that produces toilet paper, a big factory in South Australia that has pallets moving out the door. Everybody please stay calm and be rational.
बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती की क्योंकि सरकार ने ऑस्ट्रेलियन इतिहास में अपने सबसे बड़े प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण किया। संसद की कार्यवाही देर रात तक चली और कोषाध्यक्ष जॉश फ्राइडनबर्ग ने देश को टिकाए रहने के उद्देश्य से जल्दी जल्दी सभी उपायों पर बात की।
The package of economic measures that were passed by the parliament tonight were the most significant to support the Australian community and the Australian economy since wartime.
और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने घोषणा की।
Today I announce that we are committing $130 billion over the next 6 months to support the jobs and livelihoods of what we anticipate of being almost 6 million Australians.
सरकार ने जॉब कीपर स्कीम की घोषणा की। लोगों को नौकरी पर रखने के लिए $1,500 का एक पखवाड़े का भुगतान ऐलान किया, जबकि जॉब सीकर को काम से हटे लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया। अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने के लिए उसमें अरबों डॉलर लगाए गए। कोषाध्यक्ष अपने आंकड़ों के साथ बिल्कुल स्पष्ट थे।
Treasury are forecasting real GDP to have fallen by 7% in the June quarter, with household consumption, dwelling investment, business investment and exports all expected to fall as a result of the COVID crisis.
उन्होंने आगे की लंबी यात्रा के लिए ऑस्ट्रेलियन लोगों को तैयार रहने के लिए कहा।
Our economy has taken a big hit. And there are many challenges we confront. We can see the mountain ahead and Australia begins the climb.
वित्त मंत्री मिथायस कॉर्मन ने राष्ट्र को बताया, ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्था आधिकारिक तौर पर लगभग 30 वर्षों में पहली बार मंदी में आ गई थी।
We all know why we are here in this position. Overwhelmingly, we're here because of the massive fiscal impact of the coronavirus pandemic.
और फिर जैसे जैसे गर्मी के तापमान में वृद्धि हुई, कुछ ऑस्ट्रेलियन लोगों ने अपना धैर्य खो दिया और वो बीचेस पर इकट्ठा होने लगे. स्वास्थ्य मंत्री क्रेग हंट ने चेतावनी दी.
What happened in Bondi was unacceptable and the local council must take steps.
और जब लगा कि हालात बेहतर हो रहे हैं, एक विनाशकारी दूसरी लहर विक्टोरिया में आ पहुंची और प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज मीडिया में अपने अपडेट के साथ एक नियमित चेहरा बन गए. वृद्ध देखभाल क्षेत्र इस हालात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था. महामारी से प्रणाली में जो भारी दोष थे वो सामने आ गए. उधर प्रधानमंत्री ने जॉब कीपर को आगे बढ़ाया. सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में निवेश किया. दुनिया भर के सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक दिमाग टीकों पर परीक्षण के लिए जुट गए. इस बीच कैनबरा और बीजिंग के बीच व्यापार का तनाव बढ़ गया और व्यापार मंत्री साइमन बर्मिंगम ने सेनेट को बताया कि सरकार दोनों देशों के बीच संबंधों पर प्रतिबद्ध है.
Australia remains committed to constructive and workable relations with China. I hope that fundamentally this is something that the Chinese government wants too.
जौ, वाइन, लॉबस्टर, कोल, टिम्बर और बीफ सभी टैरिफ के साथ लक्षित किए जा रहे ऑस्ट्रेलियन निर्यात की सूची में शामिल हो गए. 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध अपने निम्नतम स्तर पर आ गया. एक चीनी अधिकारी के अकाउंट में ट्वीट प्रकाशित हुई जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन सैनिक की एक अफगान बच्चे के गले में चाकू रखी हुई नकली छवि दिखाई गई. स्कॉट मॉरिसन ने बीजिंग से माफी की मांग की.
The Chinese government should be totally ashamed of this post. It diminishes them in the world's eyes.
लेकिन चीन ने इससे इनकार कर दिया और ऑस्ट्रेलिया में उसके राजदूत ने कहा,
People wondered why a national leader would have such a strong opinion to an artwork done by a normal young artist in China.
एक अविस्मरणीय वर्ष को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए फेडरल राजनेता 2020 में कैनबरा के संसद भवन में आखिरी बार सदन में बैठे. विपक्ष के नेता एल्बिनीसी और प्रधानमंत्री मॉरिसन के इस वर्ष के लिए ये अंतिम संदेश रहे.
So as we come to the end of this parliamentary year and as we look forward to the Christmas period and the New Year period, we do look forward with a sense of hope. It has been a year of great loss for Australians. Terrible loss. Losses that will leave deep scars on Australians and on our country. And so as we come to the end of this parliamentary year, and as we look forward to the Christmas period and the New Year period, we do look forward with a sense of hope.
SBS News के लिए शुभा कृष्णन की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया अनीता परार ने.